नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया है। राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने तनाव कम करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का मुद्दा कई देशों के साथ बातचीत में उठाया है।
हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध 3 हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है और इसने विश्व भर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है।
इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना ही आगे बढ़ने का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति बहाली और युद्ध में कमी का समर्थन करता है। दोनों ही नेताओं ने शांति और स्थिरता के प्रयासों के लिए आपसी बातचीत को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है और सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में नागरिकों से अफवाहों का यकीन न करने और घबराहट में खरीदारी से बचने का आग्रह भी किया। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने दोहराया कि किसी भी बंदरगाह पर भीड़भाड़ नहीं है और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि समुद्री व्यापार बिना किसी रुकावट के जारी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, सेना प्रमुखों, रक्षा सचिव, रक्षा उत्पादन सचिव और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अध्यक्ष के साथ एक बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत की रक्षा तैयारियों पर इसके असर की समीक्षा की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष से प्राप्त संचालन और तकनीकी सबक का निरंतर अध्ययन किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मनमानी मूल्यांकन प्रक्रिया की वजह से स्थायी कमीशन से वंचित रखी गई सेना, नौसेना और वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी अब पूर्ण पेंशन लाभ की हकदार होंगी। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह माना जाएगा कि इन अधिकारियों को पेंशन पात्रता के लिए आवश्यक 20 वर्ष की सेवा इन्होंने पूरी कर ली है, भले ही उन्हें पहले ही सेवामुक्त कर दिया गया हो। असम, केरलम और पुदुच्चेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच हुई। कल नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन था। बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। यहां एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। ईरान ने दागी गई एक मिसाइल तेल अवीव पर गिराई। इससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 लोग घायल हो गए। हमले में इमारतों और वाहनों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसराइल ने कहा है कि ये क्लस्टर मिसाइल थी जिसमें लगभग 100 किलोग्राम के कई छोटे बम थे। आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर नवीनतम रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंच गई हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।